आत्मिक उन्नति का राजमार्ग विद्या। परम पूज्य गुरुदेव की यह विशेषता है कि वे अपने सारगर्भित व्याख्यानों के माध्यम से गुह्य ज्ञान के सूत्रों को अत्यंत सरल, सहज, सुगम भाषा में प्रस्तुत कर देते हैं। उनका यह प्रस्तुत व्याख्यान एक ऐसी ही ज्ञान की धारा, विद्या के संदर्भ में समस्त आयामों को सहजता से प्रस्तुत करता है।
युगऋषि कहते हैं कि मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, सृष्टि के नियमता की भूमिका में अपने को पाता है। क्यों? इसका कारण यह है कि मनुष्य ज्ञानार्जन कर सकता है। ज्ञानार्जन के भी दो पहलू हैं, हमारी सामाजिक उन्नति व विकास के लिए जिस धारा की जरूरत होती है उसे हम शिक्षा कहते हैं, और जिसके माध्यम से हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं, उचित अनुचित का भेद समझते हैं, विवेकशील बनते हैं, उसे विद्या कहा जाता है।
इसी विद्या को आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या, ऋतंभरा प्रज्ञा का नाम भी दिया जा सकता है।
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम शिक्षा तो अवश्य प्राप्त करें, परंतु अपने जीवन में विद्या के गुणों व सूत्रों को आत्मसात करना न भूलें। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को।
ज्ञान मनुष्य की मुख्य आवश्यकता। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियो भाइयो,
मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है?
ज्ञान। ज्ञान न हो तब ज्ञानविहीन होने की वजह से चेतन होते हुए भी सब प्राणियों को निचले दर्जे में गिना जाता है।
जीवन तो वनस्पति में भी है, परंतु ज्ञान नहीं है। दूसरे प्राणियों यथा मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, सभी में जीवन है। मेढक में भी जिंदगी है, मछली में भी जीवन है, कछुए में भी जीवन है, चिड़िया में भी जिंदगी है। फिर हम उनको निम्न स्तर का क्यों मानते हैं? उनमें एक ही कमी है कि उनमें ज्ञान नहीं है। मनुष्य ज्ञान का देवता माना गया है। ज्ञान की वजह से, मननशील होने की वजह से, विचारशील होने की वजह से मनुष्य का स्तर ऊंचा रहा है।
कल्पना कीजिए कि प्राचीन काल में जब मनुष्य वनमानुष रहा होगा, जब उसको ज्ञान नहीं रहा होगा,
सामाजिकता का ज्ञान नहीं रहा होगा और अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं रहा होगा, अपनी गौरव गरिमा और गुण, कर्म, स्वभाव की विशेषताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं रही होगी, तब जैसे कि विकासवादी वैज्ञानिक डार्विन साहब कहते थे कि मनुष्य बंदर की औलाद है, तब वास्तव में बंदर की औलाद की तरीके से इंसान भी रहा होगा।
लेकिन मित्रों, आज मनुष्य सृष्टि का स्वामी बना हुआ है।
किस वजह से? क्या उसके हाथ पांव बड़े हो गए हैं? नहीं, हाथ पांव बड़े नहीं हुए हैं,
उसके हाथ पांव वही हैं।
उनमें कोई अंतर नहीं आया है। लंबाई चौड़ाई में भी कोई अंतर नहीं आया है। नाक, आंख, कान की बनावट में भी कोई अंतर नहीं हुआ है। लेकिन जो अंतर प्राचीन काल की तुलना में आज हो गया है, वह यह है कि आदमी का ज्ञान बढ़ता हुआ चला गया है। ज्ञान की दो धाराएं हैं और दोनों को ही बढ़ाना चाहिए। ज्ञान की एक धारा वह है जो हमारी जीविका पैदा करने के काम आती है,
उसको शिक्षा कहते हैं।
लोक व्यवहार उसी के आधार पर सीखा जाता है। बच्चों को स्कूल में हम जो पढ़ाते हैं, शिक्षा पढ़ाते हैं।
शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब यह है कि उनको लोकाचार आए, उनको यह मालूम पड़े कि संसार की बनावट क्या है,
भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, दुनिया में इंसानों के चाल चलन क्या रहे हैं, दुनिया में किस तरीके से उतार चढ़ाव आते रहे हैं, ये बातें वे इतिहास से सीखें। इसी तरह मित्रों, पेड़ कैसे पैदा होते हैं,
यह सृष्टि क्या है, राजनीति क्या है,
समाज क्या है,
नागरिक कर्तव्य क्या है, आजीविका उपार्जन कैसे करना चाहिए, अर्थशास्त्र क्या है,
आदि बातें सीख करके हम आजीविका उपार्जन कर सकते हैं और इस क्षेत्र में प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। लोक व्यवहार में प्रवीण बनने के संबंध में, आजीविका उपार्जन करने के संबंध में जो जानकारियां हमको मिलती हैं, उसका नाम शिक्षा है।
शिक्षा आवश्यक है। अगर शिक्षा न होगी तो आदमी अपने शरीर को कैसे संभाल पाएगा,
समाज के साथ किस तरीके से तालमेल बिठा पाएगा, अपनी अकल का उपयोग किस तरीके से कर पाएगा, इन सब जानकारियों के लिए शिक्षा तो आवश्यक है, लेकिन शिक्षा से ही काम चलने वाला नहीं है। शरीर के लिए, भौतिक जीवन को ठीक बनाए रखने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। लेकिन केवल एक भौतिक जीवन ही तो नहीं है, एक और भी तो हमारा जीवन है, जिसको हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। हमारे भीतर कोई चेतना भी तो है, आत्मा भी तो कोई हमारे भीतर है, विवेक भी तो कोई हमारे भीतर है, संवेदनाएं भी तो कोई हमारे भीतर हैं।
शिक्षा ही नहीं, विद्या भी। मित्रों, इन सबको ठीक रखने के लिए एक और चीज की जरूरत है, जिसका नाम है विद्या।
ज्ञान की धारा उसी को कहते हैं जिसको विद्या कहा गया है।
उस विद्या का पूरा नाम अध्यात्म विद्या है।
आप इसे अध्यात्म विद्या माने तो भी हर्ज नहीं है, ऋतंभरा प्रज्ञा कहें तो भी कोई हर्ज नहीं है, आप इसको विवेक कहें तो भी हर्ज नहीं है, इसको आप गायत्री कहें तो भी कोई हर्ज नहीं है, वास्तव में महत्व उसी का है। दुनिया की जानकारियों के बारे में ढेरों आदमी ऐसे हैं जिनकी जानकारियां बहुत हैं। वे बहुत होशियार हैं। दुनिया में विद्वान कम है क्या? दुनिया में कलाकार कम है क्या? चतुर आदमी दुनिया में कम है क्या? क्रियाकुशलों की कमी है क्या? पर वे सब स्वयं के लिए हैं। दूसरों के लिए वे क्या साबित हुए, आप बताएं ना। जेलखाने में पड़े हुए लोगों को आपने देखा है ना? वे एक से बढ़कर एक होशियार आदमी हैं और एक से एक समझदार आदमी हैं। कहाँ हैं? वहीं कैदखाने में हैं। जालसाजों में पढ़े लिखे आदमी ही ज्यादा होते हैं।
नासमझ आदमी जालसाजी नहीं कर सकते।
नासमझ आदमी जेबकटी कर सकते हैं और छोटे मोटे अपराध कर सकते हैं। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी जालसाजियां हुई हैं, वह सब पढ़े लिखे लोगों ने की हैं।
इसलिए मित्रों,
मैं शिक्षा की बात नहीं करता। शिक्षा अपनी जगह पर मुबारक, इससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन जहां तक आप लोगों की सेवा में, मैं कुछ बात कह रहा हूं, विद्या के बारे में कह रहा हूं।
आपको विद्या का महत्व समझना चाहिए। विद्या का महत्व अगर आप समझ सकें, तो मजा आ जाए।
विद्या से क्या मतलब है? विद्या का मतलब यह है कि आप अपने विचारों का इस्तेमाल किस तरीके से करें, आप अपने शरीर का इस्तेमाल किस तरीके से करें, परिस्थितियों का उपयोग किस तरीके से करें, अपने पास जो साधन और सामान मिला हुआ है या मिल सकता है, आप उसे किस तरीके से ठीक तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे, बस इसी का नाम विद्या है।
इसके लिए सामान्य लोकज्ञान से काम नहीं चलता।
इसके लिए आदमी को थोड़े ऊंचे स्तर पर बैठकर विचार करना होता है और यह देखना पड़ता है कि इंसान की गरिमा, इंसान की महत्ता की सुरक्षा किस तरीके से की जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। बस इसी का नाम विद्या है। और अगर किसी को विद्या मिल जाए तब वह धन्य हो जाता है।
विद्या ही अमृत है मित्रों।
शास्त्रों में विद्या की महत्ता के बारे में न जाने क्या क्या कहा गया है।
विद्यामृतमश्नुते, विद्या को अमृत कहा गया है। जिसने विद्या प्राप्त कर ली उसको अमृत मिल गया।
जो ठीक तरीके से उचित और अनुचित का फल जानता है, उसके लिए फिर दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं रह जाती। जिसको यह मालूम है कि समस्याएं किस तरीके से पैदा होती हैं और उनके समाधान क्या हैं। सामान्यतया लोगों को यह मालूम नहीं होता है। प्रायः लोगों का यह ख्याल है कि परिस्थितियों की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
दूसरों की वजह से परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती, वरन आदमी की मनःस्थिति इसकी जिम्मेदार है।
आमतौर से यह बात लोगों की समझ में नहीं आती। महापुरुषों के इतिहास को आप पढ़ें तो यह आसानी से जान सकते हैं कि समस्याएं कहां से उत्पन्न हुई और आदमी किस तरीके से उनसे लोहा लेकर के आगे बढ़े और महापुरुषों की श्रेणी में जा बैठे।
मित्रों,
आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना है ना? जॉर्ज वाशिंगटन को जानते हैं ना? गांधी जी का जीवन इतिहास आपने पढ़ा है ना?
बुद्ध का इतिहास पढ़ा है ना? इनकी परिस्थितियों में क्या खास बात थी बताइए। कुछ नहीं थी, वरन सामान्य लोगों के बराबर अथवा उससे भी गई बीती परिस्थितियां थी। लेकिन गई बीती परिस्थितियों में भी उनकी मनःस्थिति इतनी शानदार थी कि न जाने वे कहां से कहां उठते हुए और कहां से कहां बढ़ते हुए चले गए। शंकराचार्य में क्या विशेषता थी आप बताइए। समर्थ गुरु रामदास में क्या विशेषता थी बताइए।
कबीर की क्या परिस्थितियां थी बताइए। कबीर को कौन कंधे पर उठाकर ले गया था। मनःस्थिति में विकसित करें विवेक।
केवल मनःस्थिति थी जिसमें विवेकशीलता मुख्य है। मनःस्थिति में एक चीज और आ जाए, विवेक।
आदमी के भीतर यदि विवेक आ जाए तो वह अपनी समस्याओं का हल स्वयं कर सकता है और दूसरों की समस्याओं को भी हल कर सकता है। आदमी के पास विवेक हो तो अपने पास जो साधन सामग्री मिली हुई है वह उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। आदमी को समय मिला हुआ है, आदमी को श्रम मिला हुआ है, आदमी को कैसा अच्छा खासा शरीर मिला हुआ है, आदमी को कैसा बढ़िया वाला दिमाग मिला हुआ है,
आदमी को कैसा अच्छा कुटुंब मिला हुआ है और आदमी को कैसा कार्यक्षेत्र मिला हुआ है। लेकिन इस सारे के सारे क्षेत्र का, उचित और अनुचित का समाधान हम नहीं निकाल पाते। मित्रों,
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बस यही हम भटक जाते हैं और इस वजह से हम कहीं के मारे कहीं जा पहुंचते हैं। जो हमको करना चाहिए वह हम कर नहीं पाते और जो हमको नहीं करना चाहिए वह करने लगते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे पास खास किस्म का ज्ञान नहीं है जिसको हम विवेक कहते हैं।
ज्ञान का अर्थ यहाँ विवेक है।
ज्ञान का अर्थ नॉलेज नहीं है।
ज्ञान का अर्थ है विजडम।
विजडम अगर आपके पास है तो आप हर चीज को उचित और अनुचित की कसौटी पर कस सकते हैं और सिर्फ उसी बात को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं जो आपको करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम दूसरों को काम करते देखकर दूसरों के रास्ते पर चलने लगते हैं। यह काम तो भेड़ों का होता है, इंसानों का थोड़े ही है। जहाँ ज्यादा लोग चलें वहीं हम भी चलें, जो दूसरे लोग करें वही हम करें, जो दूसरे लोग कहें वही हम कहें, दूसरे लोग जिस तरीके से मरें हम भी उसी तरीके से मरें। जीने का यह भी कोई ढंग है, यह कोई ढंग नहीं है।
आध्यात्मिकता का तकादा यही है कि प्रत्येक परिस्थिति के बारे में गुण के हिसाब से, उसके परिणाम के हिसाब से आदमी को स्वयं विचार करना चाहिए।
स्वतंत्र चिंतन इसी का नाम है। स्वतंत्र चिंतन अगर आपके पास है तो आप उचित और अनुचित का निर्धारण कर सकते हैं। उचित अनुचित में भेद का प्रतीक हंस।
मित्रों, आपको यहाँ गायत्री माता का प्रशिक्षण दिया जाता है।
आप यहाँ इस उपासना में गायत्री का शिक्षण प्राप्त करते हैं। आप गायत्री उपासना में ही लगे हुए हैं, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि गायत्री किसके कंधे पर सवार होती है और कौन गायत्री को अपने इशारे पर नचाए फिरता है। आप गायत्री माता की जिस तस्वीर का ध्यान करते हैं, उस तस्वीर में उसका वाहन देखा है ना आपने?
उस वाहन का नाम है हंस।
हंस किसे कहते हैं? हंस के ऊपर गायत्री माता सवारी करती है। यह बात शायद आपकी समझ में ना आए, क्योंकि इंसान के बराबर जिनका शरीर है वह तो किसी जानवर पर, पशुओं पर सवारी तो कर सकती है, लेकिन पक्षियों पर सवारी नहीं कर सकती। आप घोड़े पर बैठ सकते हैं, गधे पर बैठ सकते हैं, हाथी पर बैठ सकते हैं, ऊंट पर बैठ सकते हैं, भैंसे पर बैठ सकते हैं, बैल पर बैठ सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि किसी पक्षी पर, जिस बेचारे का वजन नहीं के बराबर है, उसके ऊपर आदमी कैसे बैठ पाएगा? बैठना मुश्किल है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी नहीं है, उसकी पीठ भी छो है। ऐसी स्थिति में इंसान के बराबर कोई देवता, हंस या दूसरे पक्षी की पीठ पर बैठेगा तो कैसे बैठेगा?
मित्रों,
यह एक अलंकार है जिसमें यह बताया गया है कि हंस उस व्यक्ति का नाम है जो उचित और अनुचित का फर्क करना जानता है।
आपको उचित और अनुचित का फर्क करना आना चाहिए।
लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं, उनके चलने के ढंग को आपको अलग खड़े होकर के देखना चाहिए कि मुनासिब रास्ता क्या है। लोग गलती करें तो आप क्या कर सकते हैं? लोग तो गलतियां करेंगे ही, क्योंकि यह गलतियों का जमाना है। आप पानी के बहाव में तिनके की तरीके से बहते चले जाएं, भला यह भी कोई समझदारी है? आप हवा में उड़ते हुए पत्तों के तरीके से उड़ते हुए चले जाएं, भला यह भी कोई समझदारी हुई?
आपका गौरव होना चाहिए, वजन होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व भारी भरकम होना चाहिए।
भारी भरकम का मतलब यह है कि आपको अपने जिंदगी के फैसले के बारे में फैसले स्वयं करना चाहिए। अपने रास्ते का चुनाव करने में आपकी हिम्मत आपकी सहायक होनी चाहिए। भगवान और आपका ईमान, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी सहायता से बड़े फैसले कर सकते हैं।
मित्रों,
इसके लिए आपको लोगों के रास्ते से हट करके, अलग खड़े हो करके नए ढंग से विचार करना चाहिए कि हमारे लिए क्या मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं है। आपका भविष्य किन बातों से बनता है और किन बातों से नहीं बनता है, अगर आप यह बात तय करने लगेंगे तो मैं आपको ज्ञानवान कहूंगा। ज्ञानवानों की कहानी आपने पढ़ी है ना?
भगवान बुद्ध का नाम सुना है ना? भगवान बुद्ध में क्या विशेषता थी? भगवान से उनको क्या वरदान मिला? उनको क्या विशेष संपदा मिली? आप उनके जीवन को पढ़िए। जिस बोधिवृक्ष पेड़ के नीचे उन्होंने तप किया था, वहां उनको एक खास चीज मिल गई। उस खास चीज का नाम है विवेक। दूर की बात समझने का उनको माध्यम मिल गया।
उन्होंने कहा कि सारी दुनिया से हमको प्रभावित नहीं होना है, वरन हमको दूसरों को प्रभावित करना है। जीवन यापन करने के संबंध में, जीवन संपदा का उपयोग करने के संबंध में अधिकांश लोगों की राय गलत है, लोगों के धर्रे गलत हैं। उन्होंने अपने आप को लोगों से अलग खड़ा करना शुरू किया और जमाने की ओर से आंखें बंद कर ली।
आपने भगवान बुद्ध की ज्ञान मुद्रा देखी है ना? ध्यान मुद्रा का मतलब यही है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली।
आंखें बंद करके स्वयं अपने भीतर देखा और अपनी जिम्मेदारियों को देखा,
अपने भविष्य को देखा, अपने कर्तव्यों को देखा और उन्होंने वह फैसले किए जिसके आधार पर एक सामान्य राजकुमार भगवान का अवतार कहलाने में समर्थ हुए। आत्मज्ञान और प्रज्ञा। मित्रों, उन्होंने विवेक को महत्व दिया और बुद्धम शरण गच्छामि का संदेश दिया। उनका नाम ही बुद्ध रखा गया। जन्मजात नाम तो उनका सिद्धार्थ था, बुद्ध नहीं था, लेकिन विवेक को, वास्तविकता को उन्होंने अंगीकार कर लिए, इसलिए वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध का यहाँ अर्थ विवेक है, वास्तविकता है। उन्होंने यह फैसला किया कि जो वास्तविकता होगी, सच्चाई होगी, हम सिर्फ उसी बात को मानेंगे और बेतुकी बातों को नहीं मानेंगे। इसी का नाम है आत्मज्ञान, इसी का नाम है ब्रह्म विद्या, इसी का नाम है प्रज्ञा, इसी का नाम है ऋतंबरा।
इसी को विद्या कहा गया है। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि आपने शिक्षा बहुत प्राप्त कर ली होगी और करनी भी चाहिए, लेकिन आप विद्या से वंचित न रहिए।
गायत्री की महत्ता आपने जानी है, अब आप उसका वाहन बनना शुरू कीजिए।
उसके वाहन की दो विशेषताएं हैं, एक तो वह नीर और क्षीर को अलग कर देता है, पानी और दूध को अलग कर देता है। इस दुनिया में बहुत घपला है, सब कुछ गुड़ गोबर मिला हुआ है। एक और सच्चाई की झलक दिखाई पड़ती है तो उसी के साथ में बुराई और बेईमानी का कितना पुर दिखाई पड़ता है। इसे आप किस तरीके से अलग करेंगे? विवेकशीलता के माध्यम से ही यह संभव है कि आप इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दें,
अन्यथा दूध और पानी मिलता ही चला जाएगा। सच्चाई की थोड़ी सी झलक और बेईमानी का अधिक से अधिक मादा, यही तो लोक व्यवहार है,
यही तो दुनिया है। इसे आप अलग कीजिए और हंस बनने की कोशिश कीजिए,
व्यवहार में उतारने की कोशिश कीजिए। मित्रों,
हंस क्या खाता है? मोती खाता है, कीड़े नहीं खाता है। अर्थात जो चीजें मुनासिब हैं, सही हैं, वह उन्हीं को अपनी जिंदगी में ग्रहण कर लेता है और बाकी चीजों के बारे में इनकार कर देता है कि हमको यह नहीं चाहिए। राजहंस के बारे में बताया गया है, या हंसा मोती चुगे या लंघन मर जाए। लंघन से मरना ठीक है, परंतु बेईमानी का खाना मंजूर नहीं। अगर आप ईमानदारी से कमा नहीं सकते, मुनासिब जिंदगी नहीं जी सकते, तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? ऐसी जिंदगी मत जिए। इसका मतलब यह है कि आप गरीबी में गुजारा कर लें, कंगाली में गुजारा कर लें, तकलीफ में गुजारा कर लें। तकलीफ में गुजारा ढेरों आदमी करते हैं। आप भी सच्चाई की वजह से, ईमानदारी की वजह से मुसीबत उठा लें तो हर्ज की क्या बात है। किफायतशारी बनकर रहें, अपना खर्च कम करके चलें और अपनी महत्वाकांक्षाओं को गिराकर रहें, तो आपकी जिंदगी में फिर कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ज्ञान आपको यही सिखाता है कि हम अपना रवैया बदल दें। आप अपने गुण, कर्म, स्वभाव के बारे में विचार करना शुरू करें, अपने चरित्र की देख घटाव भाल करना शुरू करें और यह विचार करें कि कहीं कमियां हमारे भीतर तो नहीं हैं। आप अपनी कमियों को सुधारने की बाबत तैयार हो जाएं तो आप देखेंगे कि सारी दुनिया किस तरीके से बदल गई। अभी जो दुनिया आपको गंदी, जलील और गलीज मालूम पड़ती है, अपना दृष्टिकोण बदल देने के बाद में कैसे खूबसूरत मालूम पड़ने लगती है।
दृष्टिकोण का परिवर्तन विद्या। मित्रों,
आप अपने आप को बदल लीजिए ना।
अपने आप को बदलने के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो इसका नाम विद्या है।
विद्या उस चीज का नाम है जो दुनियावी जानकारियों के संबंध में नहीं वरन अपनी विशेषताओं के संबंध में ज्ञान कराती है। न केवल विशेषताओं के बारे में ज्ञान कराती है, बल्कि यह बताती है कि वृत्तियां भीतर से पैदा होती हैं, बाहर से नहीं। पेड़ों से पैदा होता है, हवा से नहीं। हवा से पेड़ को सहायता तो मिलती है, लेकिन उसको खुराक जड़ों से ही मिलती है। आदमी के भीतर जो कुछ भी है, वही उसकी जिंदगी के विकास करने का मूलभूत आधार है।
इस मूलभूत आधार को आप स्वयं विकसित कीजिए।
बाहर के लोगों की आप क्यों खुशामद करते हैं? बाहर के आदमियों के लिए आप यह क्यों देखते हैं कि इनका सहयोग हमको मिला कि नहीं मिला? दूसरों का सहयोग नहीं मिला तो ना सही, दूसरे आदमी अच्छे नहीं है तो ना सही, आप अच्छे बन जाइए ना।
आप अपना दृष्टिकोण ठीक कर लीजिए ना।
आप अपना रवैया ठीक कर लीजिए ना। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए ना। फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जिंदगी में जो शिकायतें थीं, वह सारी शिकायतें दूर हो गईं।
इसी का नाम विद्या है। मित्रों, आप अपने समय का उपयोग करना सीखिए, अपने शरीर का उपयोग करना सीखिए, अपने प्रभाव का उपयोग करना सीखिए, अपनी अक्ल का उपयोग करना सीखिए।
भगवान ने जो कुछ भी दिया है उन सब चीजों का ठीक से इस्तेमाल करना सीखिए।
जरा सीखिए तो सही।
अगर आप अपने आप इन सब चीजों का सही ढंग से इस्तेमाल कर लें, तो फिर आपके सामने वो ढेरों की ढेरों समस्याएं जो कभी आपको तकलीफ के रूप में दिखाई पड़ती हैं, कभी बीमारी के रूप में दिखाई पड़ती हैं, कभी मान अपमान के रूप में दिखाई पड़ती हैं, कभी लोगों के असहयोग के रूप में दिखाई पड़ती हैं, कभी क्या और किस रूप में दिखाई पड़ती हैं, आप उन सारी समस्याओं का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को सही करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उस समझदारी को अपने जीवन में धारण कर लिया है, तो उस दिन से आपकी सारी समस्याएं और दर्द दूर हो जाएंगे।
इसलिए मित्रों, आप अपनी गरीबी अमीरी की परिभाषा को ही बदल दें,
अपने सोचने के तरीके को ही ठीक तरह से बदल दें और अपनी रीति नीति में आवश्यक सुधार कर लें, तो मैं आपसे यह कहता हूं कि आपकी सारी की सारी गुत्थियों के समाधान होंगे और आप सुखी जीवन जिएंगे, शांति का जीवन जिएंगे, आप खुशी की जिंदगी जिएंगे और आप खुशहाली की जिंदगी जिएंगे। इसलिए विद्या की ओर आपको गौर करना चाहिए। शिक्षा आपको अपने बुद्धि कौशल को बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन विद्या आपको अपनी आंतरिक स्थितियों के बारे में देख घटाव भाल करना सिखाती है।
आपको अपने गुण, कर्म, स्वभाव का पुनर्निरीक्षण और पुनर्निर्धारण करना चाहिए।
आपको अपनी गतिविधियों के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में विचार करना चाहिए कि इसमें गलतियां कहां हैं। जहां कहीं भी गलतियां हैं, अगर उसको आप सुधार पाएं, तो फिर मैं कहूंगा कि आपके हाथ एक ऐसी चीज लग गई जिसके आधार पर आप खुशी की जिंदगी जिएंगे, मोहब्बत की जिंदगी जिएंगे, प्यार की जिंदगी जिएंगे। आप एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसमें आपकी खुशी उन सब लोगों को मिले जो आपके नजदीक आते हों, जो आपसे संबंध रखते हों। अगर आप विवेकशीलता को अख्तियार कर लें तो आपके घरवाले आपसे बेहद खुश देखे जाएंगे।
मित्रों,
अगर आप अपने आप को सांचा बना लें तो जो कोई भी आपके नजदीक आएगा वह उस ढांचे में ढलता हुआ चला जाएगा। अगर चंदन के नजदीक आने के बाद में झाड़ झंखाड़ खुशबूदार बन सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि अगर आप समुन्नत स्तर के व्यक्ति हैं तो जो कोई भी आपके नजदीक आए, जो भी आपका सहयोगी बने, जो भी आपके संपर्क में आए तो खुशहाल न बने, समुन्नत न हो।
आत्मकल्याण का भी यही रास्ता है और लोक कल्याण का भी इसी में रास्ता है।
ये दोनों रास्ते आपको विद्या के आधार पर, ज्ञान के आधार पर मिल सकते हैं। इसलिए शिक्षा के तरीके से विद्या को भी महत्व देना चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए।
आज की बात समाप्त। ओम शांति।